पृष्ठ संख्या 32। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। इस काल में जो देश बड़े शक्तियों के रूप में उभरे हुए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित अंग्रेजों के 13 उपनिवेशों जब इंग्लैंड से स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में उदित हुए, उसके लगभग 100 वर्षों के दौरान उस देश ने अपने वर्तमान प्रादेशिक विस्तार को प्राप्त कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिम की ओर जो विस्तार हुआ, उसका खामियाजा उन क्षेत्रों में रहने वाले अमेरिकी इंडियन काबिलों को भुगतना पड़ा। अमेरिकी इंडियनों ने गोरों के अतिक्रमण का प्रतिरोध अवश्य किया, लेकिन आखिरकार 1890 में दक्षिण डकोटा में वुंडीड नी नामक स्थान में गोरों द्वारा मचाए गए कत्लेआम के साथ ही इस प्रतिरोध का अंत हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस और रूस से क्रमशः लुइसियाना और अलास्का के विस्तृत प्रदेश भी खरीद लिए। एक लड़ाई में मैक्सिको को हराकर उससे टेक्सास और कैलिफोर्निया के प्रदेश छीन लिए। 1861 से 1865 तक संयुक्त राज्य को गृहयुद्ध की आग में से गुजरना पड़ा। इसका कारण यह था कि देश के दक्षिणी राज्यों के बगानों में गुलामों से काम लिया जाता था। जब इन राज्यों ने संघ से अलग होने की घोषणा की तो देश में गृहयुद्ध छिड़ गया। युद्ध में इन राज्यों की पराजय हुई, अमेरिकी संघ बना रह गया और गुलामी समाप्त कर दी गई। गृहयुद्ध की समाप्ति के लगभग 3 दशकों के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बन गया। 19वीं सदी का अंत होते होते वह दुनिया के लोहे और इस्पात के कुछ उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा उत्पादित करने लगा। उद्योग के लगभग हर क्षेत्र में उसने दुनिया के अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया। देश में रेल पथों की लंबाई लगभग 3 लाख किलोमीटर हो चली। पूरे यूरोप के रेल मार्गों की लंबाई भी इतनी नहीं थी। दुनिया के सभी देश मिलकर जितने तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन और उपभोग करते थे, उससे कहीं अधिक का उत्पादन और उपभोग अमेरिका अकेले करता था। काफी लंबे अरसे तक अमेरिका के इस आश्चर्यजनक आर्थिक विकास की ओर दुनिया का ध्यान नहीं गया। इसका एक कारण यह था कि अमेरिका के अधिकांश उत्पादों की खपत इसके अपने ही विशाल बाजार में हो जाती थी। 1790 में उसकी आबादी लगभग 40 लाख थी, लेकिन 1910 में वह लगभग 9.2 करोड़ तक पहुंच गई। 19वीं सदी में और 20वीं सदी के प्रथम दशक के दौरान लगभग 2.5 करोड़ यूरोपियन अमेरिका में जाकर बस गए थे। इसके अलावा अमेरिका यूरोप तथा दुनिया के मामलों में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं ले रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका साम्राज्यवादी शक्तियों के रूप में 19वीं सदी के अंतिम दशक तक अमेरिका एक नई साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर चुका था। 1889 में अमेरिकी सीनेट के एक सदस्य ने कहा, आज हम जितने का उपभोग कर सकते हैं उससे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। आज हम जितनी चीज़ों का उपभोग कर सकते हैं उससे कहीं अधिक का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने उत्पादन के लिए नए बाजार ढूंढने हैं, अपनी पूंजी के लिए निवेश के नए क्षेत्रों की तलाश करनी है, अपने श्रम के लिए नए काम खोजने हैं। एक अन्य सीनेट सदस्य ने चेतावनी के स्वर में कहा था कि संयुक्त राज्य को दुनिया की दौड़ से अलग नहीं पड़ जाना चाहिए। इस समय के बहुत से यूरोपियन की तरह अमेरिकी लोग भी सभ्य राष्ट्रों के रूप में पिछड़े राष्ट्रों को ऊपर उठाने के दायित्व की बात करने लगे थे। वे भी कहने लगे थे कि कमजोर राष्ट्रों पर सबल राष्ट्रों का प्रभुत्व प्रकृति का नियम है। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का विस्तार इससे भी पहले शुरू हो चुका था। हवाई द्वीपों को उन्होंने 1881 में ही अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा बना लिया था। हालांकि इन द्वीपों को 1898 में अमेरिकी संघ में मिलाया गया। 1880 वाले दशक में सामोआई द्वीपों को लेकर अमेरिका जर्मनी तथा ब्रिटेन में प्रतिद्वंद्विता के कारण युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कुछ काल के लिए तीनों देशों ने इन द्वीपों पर त्रिपक्षीय नियंत्रण कायम रखा, लेकिन 1894 में जर्मनी और संयुक्त राज्य ने इन्हें आपस में बांट लिया तथा ब्रिटेन को इसकी भरपाई अन्यत्र कर दी गई। 1893 में संयुक्त राज्य ने पूरे अमेरिकी महाद्वीप पर अपने प्रभुत्व की घोषणा कर दी। वेनेजुएला और ब्रिटिश गयाना, वर्तमान गयाना के बीच के प्रादेशिक विवाद के दौरान संयुक्त राज्य ने ब्रिटेन को यह मामला पंच फैसले के सुपुर्द करने के लिए मजबूर कर दिया और साथ ही ऐलान किया कि आज संयुक्त राज्य इस महाद्वीप के लगभग संप्रभु शक्ति है और उसका आदेश ही यहाँ के लोगों के लिए कानून है। 1898 में संयुक्त राज्य ने क्यूबा को लेकर स्पेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। उन दिनों प्योर्टो रिको के अलावा यही अमेरिका में स्पेन का एक उपनिवेश था। उसे एक शानदार छोटी लड़ाई बताया गया। हालांकि जो लोग इसमें लड़े उनके लिए यह ना तो शानदार थी और ना ही छोटी। संयुक्त राज्य ने प्रशांत स्थित स्पेनी उपनिवेश फिलीपाइंस पर भी आक्रमण कर दिया। स्पेन की पराजय हुई और उसे प्योर्टो रिको तथा प्रशांत क्षेत्र में गुआम द्वीप संयुक्त राज्य के हवाले कर देने पड़े। फिलीपीनों को स्वशासन के लिए अयोग्य माना गया और संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने यह कहते हुए फिलीपाइंस को अमेरिका का उपनिवेश बना दिया कि उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय प्रेरणा मिली है। क्यूबा को अन्य किसी भी देश में कोई संधि संबंध स्थापित करने से मना कर दिया गया और संयुक्त राज्य ने दावा किया कि क्यूबा की स्वतंत्रता और उसके जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के लिए उसे उस देश में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यद्यपि कहने को क्यूबा स्वतंत्र था, तथापि वह संयुक्त राज्य का छल्ला बनकर रह गया था। 1890 के दशक में जब यूरोपीय शक्तियां चीन को विभाजित करने की तैयारी कर रही थी तो संयुक्त राज्य को लगा कि इस तरह तो वह एक बंदरवाट से बाहर रह जाएगा, इसलिए उसने खुले दरवाजे की नीति की घोषणा की, जिसका मतलब यह था कि चीन में यहाँ तक कि जिन जिन प्रदेशों पर अलग अलग देश अपना विशेष प्रभाव क्षेत्र होने का दावा करते थे, उसमें भी कोई देश किसी अन्य देश के साथ भेदभाव ना करे। बॉक्सर विद्रोह भड़कने पर उसे दबाने और बीजिंग पर कब्जा करने में संयुक्त राज्य की सेना भी यूरोपीय ताकतों के साथ शामिल थी। 20वीं सदी के आरंभिक वर्ष आते आते संयुक्त राज्य को स्वयं के एक विश्व शक्ति होने का पूरा एहसास हो चला था। अन्य जातियों के प्रति संयुक्त राज्य के रुख में प्रजातिवाद केसिसम का भी तत्व था। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के अनुसार सभ्य राज्य मुख्य रूप से गोरे थे और असभ्य राष्ट्र प्रधानता गैर गोरे। अपनी विदेश नीति को उसने इस सूत्र में व्यक्त किया, मीठा बोलो लेकिन हाथ में डंडा रखो। उसे चीन में रूसी मंसूबों को लेकर चिंता थी, इसलिए जब 1904 में जापान ने रूसी बेड़े पर हमला किया तो संयुक्त राज्य बहुत खुश हुआ। बाद में उसने रूस जापान के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने में बीच बचाव किया और इस लड़ाई में जापान ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था उन पर उसके वर्चस्व को स्वीकार करने के लिए रूस को राजी किया। इस प्रकार कोरिया तथा दक्षिण मंचूरिया पर जापान के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया गया। सखलीन द्वीप भी, जिस पर पहले रूस का आधिपत्य था, जापान के नियंत्रण में आ गया। रूजवेल्ट ने जापान के साथ एक गुप्त समझौता भी किया, जिसके फलस्वरूप संयुक्त राज्य को उस क्षेत्र में निर्बाध रूप से व्यापार करने की सुविधा मिल गई। लेकिन संयुक्त राज्य की जापान की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा की तुष्टि की नीति बाद में उसे काफी महंगी पड़ी, क्योंकि जापान की प्रशांत क्षेत्र में उसका प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बन गया। लैटिन अमेरिका को संयुक्त राज्य के विशेष हित के क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा, जिसमें केवल संयुक्त राज्य की हस्तक्षेप कर सकता था। 1904 में रूजवेल्ट ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य को न केवल अमेरिकी महाद्वीप में यूरोपियों के हस्तक्षेप का विरोध करने का अधिकार है, बल्कि व्यवस्था कायम रखने के लिए अपने पड़ोसियों के मामलों में दखलअंदाजी करने का भी हक है। यह नीति बाद में चलकर मनरो सिद्धांत के नए उपसिद्धांत के रूप में विख्यात हुई। 30 वर्षों से अधिक काल तक संयुक्त राज्य ने डोमिनिकन रिपब्लिक के तट पर राजस्व को अपने नियंत्रण में रखा। 1906 में संयुक्त राज्य के सैनिक क्यूबा में उतरे और वहां शांति व्यवस्था कायम रखने के नाम पर 3 वर्षों तक जमे रहे। पनामा नहर का निर्माण पूरा किया जाना रूजवेल्ट की सबसे बड़ी कृति मानी जाती है। एक फ्रांसीसी कंपनी ने कोलंबिया में पनामा नहर के निर्माण का लगभग 40% कार्य पूरा कर लिया था। संयुक्त राज्य ने फ्रांसीसी कंपनी से उसकी यह संपत्ति खरीद ली, लेकिन कोलंबिया की भूमि पर यह नहर बनाने के अधिकार के एवज में संयुक्त राज्य ने जो कुछ देने को तैयार था वह कोलंबिया की सरकार को स्वीकार नहीं हुआ। रूजवेल्ट ने कहा कि कोलंबिया वाले लुटेरे और ब्लैकमेलर मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने वाले लोग हैं। इसके शीघ्र बाद एक अमेरिकी उद्योगपति के पैसे के जोर पर पनामा में एक क्रांति रची गई व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर, लेकिन वास्तव में कोलंबिया को इस तथाकथित क्रांति को दबाने से रोकने के लिए। संयुक्त राज्य की सेना पनामा में उतरी और 3 दिन बाद पनामा को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई। पनामा की नई सरकार ने संयुक्त राज्य के साथ पनामा नहर के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की शर्तें संयुक्त राज्य के लिए उन शर्तों से भी अधिक अनुकूल थी जो पिछले समझौते में कोलंबिया के सामने रखी गई थी और जिन्हें कोलंबिया ने अस्वीकार कर दिया था। आखिर 1914 में पनामा नहर खुल गई। इस बीच रूस जापान युद्ध को समाप्त करने में रूजवेल्ट की भूमिका के लिए उसे 1906 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। लैटिन अमेरिकी देशों के मामलों में संयुक्त राज्य की हस्तक्षेप की नीति विलियम हॉवर्ड टेफ्ट तथा वुड्रो विल्सन के राष्ट्रपतित्व काल में भी चलती रही। टेफ्ट ने लैटिन अमेरिकी देशों में तथा अन्यत्र भी अमेरिकी उपनिवेशों को बढ़ावा देने तथा उसके लिए उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की नीति अपनाई, लेकिन इस नीति में जरूरत पड़ने पर गनबोटों के इस्तेमाल और सैनिक हस्तक्षेप के लिए भी गुंजाइश रखी गई थी। विल्सन के राष्ट्रपतित्व काल में संयुक्त राज्य ने मैक्सिको के प्रति जो नीति अपनाई उसके कारण मैक्सिको संयुक्त राज्य का अस्थायी शत्रु बन गया। 1910 में फ्रांसिस्को मेदरो नामक एक जनप्रिय नेता ने मैक्सिको के एक भ्रष्ट तानाशाह को अपदस्थ कर दिया था। 1913 में संयुक्त राज्य की शाह पर एक अन्य तानाशाह ने मेदेरो को अपदस्थ करके मरवा डाला। कुछ काल बाद इस तानाशाह को भी अपदस्थ कर दिया गया, लेकिन संयुक्त राज्य मैक्सिको के मामलों में दखलंदाजी की अपनी नाकामयाबी कोशिश करता रहा।